हरे कृष्णा। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज से एक महीने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम शुरू हो रहा है। क्या है वो? तुलसी सालिग्राम जलदान आज से। और ये जो महीना जो होता है तुलसी सालिग्राम जलदान का, ये चंद्रमा के अनुसार नहीं है, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, चंद्रमा के अनुसार भी 12 महीने होते हैं और सूर्य के अनुसार भी होते हैं 12 महीने। तो सूर्य के अनुसार जो है, जो 12 महीने होते हैं वो कैसे होते हैं? राशि के अनुसार होते हैं। सूर्य जब किसी विशेष राशि में प्रवेश करता है जिस दिन से, तो वो महीना शुरू होता है। तो आज का जो दिन है वो सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो आज से जो है सूर्य के अनुसार वो महीना शुरू हो रहा है। तो जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो तब से शुरू करके एक महीने तक जो समय होता है, तुलसी सालिग्राम जलदान का समय होता है। तो ये जो महीना है, ये सालिग्राम भगवान के लिए सबसे ज़्यादा गर्मी का महीना होता है। हम लोगों के हिसाब से तो गर्मी का जो समय है वो हमेशा बदलता रहता है, अलग अलग स्थानों में है? और कभी कभी किसी साल गर्मी देर से शुरू होती है, कभी जल्दी शुरू होती है, तो कुछ निश्चित नहीं हम लोगों को कब गर्मी लगेगी और कब गर्मी नहीं लगेगी। इन सालिग्राम जी के लिए जो है, साल में एक महीना जो है सबसे ज़्यादा गर्मी का होता है, वो होता है कौन सा? मेष संक्रांति से जो शुरू होता है। तो इसमें जो है उनको विशेष रूप से ठंडक की आवश्यकता होती है। तो सालिग्राम शिला को तुलसी के पेड़ के नीचे रख कर के, और जब पानी गिराया जाता है तो वो सालिग्राम के शरीर में पानी मतलब गिर करके और बहता हुआ तुलसी को प्राप्त होता है। तो इससे क्या होता है कि सालिग्राम और तुलसी दोनों की सेवा होती है। तुलसी जी को भी जो है सिंचन प्राप्त होता है, और वो सिंचन कौन सा होता है? सालिग्राम के स्पर्श का जल, है ना। तो सालिग्राम को भी ठंडक महसूस होती है। तो ठंडक पाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आपके भी सिर में एक एक बूंद पानी अगर टपकाया जाए, है ना, तो जो है तो बड़ी अच्छी ठंडक होगी। तो फिर सब कूलर की और ये एसी की ज़रूरत नहीं है, एक एक बूंद अगर पानी सिर में गिराया जाए। तो सालिग्राम जी को जो है मतलब ठंडक देने का बड़ा सरल उपाय है। तो आज से जो है मेरे ख्याल से इस मंदिर में भी कर रहे हैं, किया है ना। तो तुलसी के गमले में एक जो है फ्रेम लगा दिया जाता है, उसमें एक पात्र, जल का पात्र लटका दिया जाता है, उसमें ऐसा छेद, इस तरह छेद करते हैं कि एक एक बूंद पानी गिरे, और तुलसी के पेड़ के नीचे सालिग्राम शिला रखी जाती है। इस तरह से रखी जाती है कि वो जल के पात्र से जो बूंद गिरेगी वो सालिग्राम के ऊपर गिरेगी। तो इस तरह से सालिग्राम को जो है जल प्राप्त होता है और शीतलता प्राप्त होती है, और तुलसी को भी जो है सिंचन प्राप्त होता है। तो लगातार एक महीने तक ये जो है सेवा होती है, तो ये बहुत ही अच्छी सेवा है, भगवान को प्रसन्न करने का बड़ा अच्छा तरीका है ना। तो आप लोग भी जो है अपने घर में ये कर सकते हैं, किसी तरह से ऐसी व्यवस्था करें। अगर घर में तुलसी का गमला है और सालिग्राम शिला है, तो ऐसा जो है करना एक बहुत अच्छा अवसर है भगवान की सेवा करने का। अब प्रश्न उठता है कि तुलसी और सालिग्राम, ये जो है तुलसी वृक्ष के रूप में कैसे प्रकट हुई और शालिग्राम शिला के रूप में कैसे प्रकट हुए, तो इसकी कथा अलग अलग पुराणों में अलग अलग प्रकार से प्राप्त होती है। तो हम जो सुनेंगे कथा, ये ब्रह्म विवर्त पुराण से सुनेंगे। तो इस कथा को सुना रहे हैं नारायण ऋषि गंधमादन पर्वत पर। आप जानते हैं गंधमादन पर्वत पर नर नारायण ऋषि हैं और सुन रहे हैं कौन, नारद जी। नारद जी भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और नर नारायण ऋषि भी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। तो आप सोचिए कि कितनी अद्भुत कथा होगी, है कितनी दिव्य कथा होगी जिस कथा को नारद जी सुने और सुनाए कौन, नारायण ऋषि। तो नारद जी ने पूछा, प्रभु साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी, इसका जन्म कहाँ हुआ था और पूर्व जन्म में ये कौन थी, इस साध्वी देवी ने किसके कुल को पवित्र किया था यानी किस कुल में पैदा हुई थी, इसके माता पिता कौन थे, किस तपस्या के प्रभाव से भगवान श्री हरि इसे पति रूप में प्राप्त हुए, क्योंकि वे परम प्रभु तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, कैसे पति प्राप्त, तुलसी को भगवान पति के रूप में कैसे प्राप्त हुए। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी सुयोग्या देवी को वृक्ष क्यों होना पड़ा, ऐसा दंड कि वृक्ष बनी, और ये परम तपस्विनी देवी कैसे असुर के जंगल में फंस गई। संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाले प्रभु, आप मेरे संशय को मिटाने की कृपा करें। तो ये कथा चूंकि बहुत विस्तृत है तो हम जो है सीमित समय के अनुसार इस कथा को जो है कुछ छोड़ करके सुनाएंगे। तो नारद जी से जब बताते हैं तो दक्ष सावर्ण नाम के एक मनु की बात बताते हैं कि वे मनु हुए हैं और उनके वंश में एक राजा हुए हैं धर्मध्वज। भगवान नारायण कहते हैं, नारद धर्मध्वज की पत्नी का नाम माधवी था। तो आप समझ रहे, ये नोट करना चाहिए कि तुलसी महारानी के पिता कौन है, राजा धर्मध्वज, धर्मध्वज, ठीक है, और माता का नाम क्या है, माधवी। वो राजा के साथ गंधमादन पर्वत पर सुंदर उपवन में विहार करती थी। ज्यों दीर्घ काल बीत गया उन्हें इसका ज्ञान नहीं रहा कि कब दिन बीता कब रात। इस प्रकार राजा धर्मध्वज के हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने हास विलास से विलग होना चाहा, परंतु माधवी अभी तृप्त नहीं हो सकी थी, उसे गर्भ रह गया। उसका गर्भ प्रतिदिन बढ़ता गया और शोभा बढ़ाता गया। कार्तिक की पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से एक कन्या प्रकट हुई। तो ये तुलसी जी का जो है, तुलसी महारानी का जन्मदिन है, कौन सा जन्मदिन है, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसके गर्भ से कन्या प्रकट हुई। उस समय शुभ दिन, शुभ योग, शुभ क्षण, शुभ लग्न और शुभ ग्रह का संयोग था और शुक्रवार का दिन था। कार्तिक पूर्णिमा, शुक्रवार, शुक्रवार के दिन देवी माधवी ने लक्ष्मी के अंश भूत उस कन्या को जन्म दिया। कन्या का मुख ऐसा मनोहर था मानो शरद ऋतु की पूर्णिमा का चंद्रमा हो। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर थे। शीतकाल में सुख देने के लिए उसके संपूर्ण अंग गर्म रहते थे। ये बच्ची जो है मतलब ऐसी दिव्य थी कि इसको गोद में ले लो तो सर्दी में जो है आपको हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। शीतकाल में उसका पूरा शरीर गर्म रहता था और उष्णकाल में शीतल बनी रहती थी। गर्मी में उसको गोद में उठा लो तो आपको जो है हीटर की, वो कूलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सदा 16 वर्ष की किशोरी जान पड़ती थी। सुंदर केश ऐसे थे मानो बट वृक्ष को घेर कर शोभा पाने वाले परोह। उसकी कांति पीले चंपक की तुलना कर रही थी। असंख्य सौंदर्यों में एक थी। स्त्री और पुरुष उसे देखकर किसी के साथ तुलना करने में असमर्थ हो जाते थे। अति विद्वान पुरुषों ने उसका नाम रखा तुलसी। तुलसी का मतलब है जिसके साथ किसी की तुलना ना हो सके। सुंदरता में तुलसी भूमि पर पधारते ही वो ऐसी सुयोग्या बन गई मानो साक्षात देवी हो। जैसे जन्म लिया तो बिल्कुल मतलब हो गई देवी की तरह। सब लोगों के मना करने पर भी उसने तपस्या करने के विचार से बद्री वन को प्रस्थान किया। जन्म लेते ही वहां रहकर वो दीर्घ काल तक कठिन तपस्या करती रही। उसके मन का निश्चित उद्देश्य था कि स्वयं भगवान नारायण मेरे स्वामी हो। ग्रीष्म काल में पंच अग्नि तपती थी। पांच प्रकार की अग्नि गर्मी के दिनों में, पांच प्रकार की अग्नि कैसी होती है? एक तो अग्नि है चारों तरफ आग लगाई है, चारों तरफ आग का घेरा बनाया है, एक अग्नि हो गई। दूसरी अग्नि सूर्य की खुली धूप ऊपर से। तीसरी गर्मी जमीन भी गर्म, नंगी जमीन में बैठना तो वो गर्मी है ना। और चौथी गर्मी भूख भी भूख की, और पांचवी गर्मी प्यास की। पंचाग्नि गर्मी के दिनों में पांच प्रकार की अग्नि तपती थी, और जाड़े के दिनों में जल में गले तक रह करके तपस्या करती थी। वर्षा ऋतु में वर्षा की धारा का वेग खुले मैदान में सहन करती थी। हजारों वर्षों तक वो फल और जल पर रही, फिर हजारों वर्षों तक केवल पत्ते चबा कर रही। कितनी तपस्या! फिर हजारों वर्षों तक केवल वायु के आधार पर प्राणों को टिकाया, केवल हवा पिया। इससे उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। फिर हजारों वर्षों तक बिल्कुल निराहार, निराहार मतलब अब हवा भी नहीं पी रही, और एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करती रही। उसे देखकर ब्रह्मा जी उत्तम वर देने के विचार से बद्रिकाश्रम में पधारे। हंस पर बैठे हुए चतुर्मुख ब्रह्मा को देखकर तुलसी ने प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी बोले, तुलसी तुम मनो अभिलषित वर मांग सकती हो, भगवान श्री हरि की भक्ति चाहिए, या उनकी दासी बनना चाहती हो, या अजर अमर होना चाहती हो, जो तुम्हारी इच्छा हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने कहा। तुलसी ने कहा, तात पितामह सुनिए, मेरे मन में जो अभिलाषा है उसे बता रही हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वज्ञ हैं, अतः आपके सामने मुझे लज्जा ही क्या है। पूर्व जन्म में मैं तुलसी नाम की गोपी थी। कौन थी? तुलसी नाम की गोपी थी। अभी तो तुलसी नाम की राजकन्या हूँ, राजा की कन्या हूँ। पिछले जन्म में तुलसी नाम की गोपी थी, और गोलोक मेरा निवास स्थान था। कहाँ पर? गोलोक। गोलोक मेरा निवास स्थान था। भगवान श्री कृष्ण की प्रिया, उनकी अनुचरी, उनकी अर्धांगिनी, उनकी प्रेयसी सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। क्या क्या? उनकी प्रिया, उनकी अनुचरी, अर्धांगिनी, प्रेयसी सखी, सब कुछ होने का सौभाग्य प्राप्त था। गोविंद नाम से शोभित उन प्रभु के साथ में हास विलास में रत थी। उस परम सुख से मैं भी तृप्त नहीं हुई। इतने में एक दिन भगवती राधा ने रास मंडल में पधार कर रोष से मुझे ये शाप दे दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। राधा रानी, राधा रानी माननी है, राधा रानी माननी है, तो उनसे स्वतंत्र होकर के कोई जो है अगर कृष्ण की प्रिया बनना चाहे तो राधा रानी रुष्ट होती हैं, सहन नहीं करते। तो उन्होंने साप दिया, ये बंद कर दी। सब पंखे बंद कर सकते हैं तो बंद कर दिया। आप लोग थोड़ा गर्मी सहन करिए, क्योंकि मुझे बाधा पड़ रही है बोलने में खांसी की वजह से। सब पंखे बंद कर दिए। तो राधा रानी ने मुझे साप दिया कि तुम मानव योनि में उत्पन्न हो। उसी समय भगवान गोविंद ने मुझसे कहा, हे देवी तुम भारत वर्ष में रहकर तपस्या करो और ब्रह्मा जी तुम्हें वर देंगे। अब देखो ब्रह्मा जी से बता रही हो कि भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम भारत वर्ष में रहकर तपस्या करो और ब्रह्मा जी तुम्हें वर देंगे। उनके वरदान से मेरे अंश चतुर्भुज श्री विष्णु को तुम पति रूप में प्राप्त कर लोगी। पति रूप में प्राप्त कर लोगी। कहां पर? वैकुंठ में। क्योंकि राधा रानी यहां माननीय है, तो राधा रानी से स्वतंत्र होकर के कोई मेरे साथ संबंध नहीं बना सकती, तो तुम अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करो और विष्णु को जो है पति रूप में प्राप्त करो। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण भी अंतर्धान हो गए। मैंने अपना ये शरीर त्याग दिया, अब इस भूमंडल में उत्पन्न हुई हूँ। सुंदर सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप भगवान नारायण को मैं प्रीतम पति रूप से प्राप्त करने के लिए वर मांग रही हूँ, आप मेरी अभिलाषा पूर्ण करने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले, भगवान श्री कृष्ण का एक सेवक सुदामा नाम का गोपी इस समय श्री राधिका के हिसाब से भारतवर्ष में उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं सुदामा नाम का गोपी गोलोक धाम से ही राधा रानी के हिसाब से उत्पन्न हुआ है भारतवर्ष में। उस परम तेजस्वी गोप को श्री कृष्ण का सखा कहते हैं। सांप के कारण उसे धनुकुल में उत्पन्न होना पड़ा है, शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध है। दानव दैत्य अलग है, दानव अलग है। कश्यप की ही एक पत्नी का नाम धनु है, तो जिससे जो संतान उत्पन्न हुए सब दानव के लाए, और कश्यप की एक पत्नी का नाम दिति है, उससे जो संतान उत्पन्न हुई वो दैत्य के लाए, तो ये दानव है, शंखचूड़ नाम का दानव। ये भी गोलोक धाम में कौन था, सुदामा नाम का गोप था, कृष्ण का सखा था। शंखचूड़ नाम से वो प्रसिद्ध है, तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जिससे बढ़कर के हो। वो सुदामा इस समय समुद्र में विराजमान है। उसे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से पूर्व जन्म की सभी बातें स्मरण हैं। तुम भी पूर्व जन्म की सब बातों को जानती हो। इस जन्म में वो सुदामा तुम्हारा पति होगा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वो सुदामा तुम्हारा पति होगा। इसके बाद शांत स्वरूप भगवान नारायण तुम्हें पति रूप से प्राप्त होंगे और लीला वर्ष वही नारायण तुमको श्राप दे देंगे, अतः अपनी कला से तुम्हें वृक्ष बनकर भारत में रहना होगा और समस्त जगत को पवित्र करने की योग्यता तुम्हें प्राप्त होगी। तुम समस्त पुष्पों में प्रधान माने जाओगे। भगवान विष्णु तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय मानेंगे। तुम्हारे बिना पूजा निष्फल समझी जाएगी। वृंदावन में वृक्ष रूप से रहते समय लोग तुम्हें वृंदावनी कहेंगे। तुमसे उत्पन्न पत्तों से भगवान माधव की पूजा संपन्न होगी। तुम मेरे वरदान के प्रभाव से वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर भगवान श्री कृष्ण के साथ स्वेच्छापूर्वक निरंतर आनंद भोगोगी। तो ब्रह्मा जी ने तो बहुत कुछ बता दिया। तुलसी ने तो केवल एक बात बोली थी कि आप नारायण को मेरा पति बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने मतलब आगे की और पीछे की काफ़ी बातें बताई है ना। तो तुम्हें नारायण पति रूप में प्राप्त होंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें पति रूप में कौन प्राप्त होगा, शंखचूड़ जो कि सुदामा नाम का गोप है, गोलोक धाम से जन्म लिया उसने, और उसके बाद फिर तुम्हें जो है भगवान नारायण पति रूप में प्राप्त होंगे, और उसके बाद तुम तुलसी का रूप धारण करोगी और भगवान कृष्ण के साथ आनंद भोगोगी, क्योंकि तुम्हारी इच्छा जो थी कृष्ण के साथ हास विलास करने की, तो वो भी तुम्हारी पूरी होगी। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर तुलसी के मुख पर हंसी छा गई, उसके मन में अपार हर्ष हुआ। उसने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहने लगी, अब क्या बोली, तुलसी ने कहा, पितामह मैं बिल्कुल सच्ची बात कहती हूँ, दो भुजा से शोभा पाने वाले श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मेरी जैसी अभिलाषा है वैसे चतुर्भुज श्री विष्णु के लिए नहीं है। तो फिर मैंने मांगा क्यों आपसे कि भगवान विष्णु को मेरा पति बनाई, क्योंकि कृष्ण ने आज्ञा दी थी मुझे, कृष्ण की आज्ञा से मैंने आपसे मांगा, लेकिन मेरी जो सच्ची जो बात है मेरे मन की वो क्या है, श्याम सुंदर, जो दो भुजाओं के श्याम सुंदर हैं उनको पाने की जो अभिलाषा है जैसी वैसी विष्णु के लिए नहीं है, परंतु उन गोविंद की आज्ञा से ही मैं चतुर्भुज श्री हरि के लिए प्रार्थना करती हूँ। हाय वे गोविंद मेरे लिए परम दुर्लभ हो गए हैं, आप ऐसी कृपा करें कि उन्हीं गोविंद को मैं पुनः निश्चय रूप से प्राप्त कर सकूं, साथ ही मुझे राधा के भय से भी मुक्त कर दीजिए। राधा रानी का बड़ा भय है गोविंद को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, राधा रानी के भय से भी मैं मुक्त हो जाऊँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी मैं तुमको राधा रानी का षोड़श अक्षर मंत्र का उपदेश करता हूँ, तुम इसे धारण कर लो और मेरे वर के प्रभाव से तुम राधा को प्राण के समान प्रिया बन जाओगी। हाँ, ये विधि है ना, राधा रानी को प्रसन्न करो इस मंत्र के द्वारा, फिर तुम जो है कृष्ण के साथ विहार कर सकती हो, फिर कोई बाधा नहीं आएगी। भगवान गोविंद के लिए तुम वैसी प्रेसी बन जाओगी जैसी राधा रानी। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने तुलसी को राधा रानी का षोडशाक्षर मंत्र बता दिया, सारी उपासना की विधि बताई, और ब्रह्मा जी ने जैसा कहा था वैसा तुलसी ने किया और प्रसन्न हो गई, सब दुख दूर हो गए तुलसी के। इसके बाद फिर उस वन में शंखचूड़ जो दानव है वो आता है, और ब्रह्मा जी की आज्ञा से शंखचूड़ के साथ तुलसी का विवाह होता है। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद शंखचूड़ और तुलसी को इस प्रकार आशीर्वाद रूप में आज्ञा देकर ब्रह्मा जी अपने लोक में चले गए। तब शंखचूड़ ने गांधर्व विवाह के अनुसार तुलसी को अपनी पत्नी बना लिया। शंखचूड़ अपने भवन में जाकर तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा। अपनी चिर संगनी धर्म पत्नी परम सुंदरी तुलसी के साथ आनंदमय जीवन बिताते हुए राजा शंखचूड़ ने दीर्घ काल तक राज्य किया। देवता, दानव, असुर, गंधर्व, किन्नर, राक्षस सभी शंखचूड़ के शासन काल में शांत रहते थे, बहुत सुखी थे। लेकिन अधिकार छिन जाने के कारण देवताओं की स्थिति भिक्षुक जैसी थी, अतः वे सभी अत्यंत उदास होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए, अपनी स्थिति बतलाकर बहुत विलाप करने लगे। तब ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर शंकर जी के स्थान पर गए। वहां पहुंचकर शिव जी से सभी बातें सुनाई। ब्रह्मा और शिव देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ के लिए चले। वैकुंठ परम धाम है, वो सबके लिए दुर्लभ है, वहां बुढ़ापा और मृत्यु का प्रभाव नहीं है। भगवान श्री हरि के भवन का प्रवेश द्वार परम श्रेष्ठ है। वहां पहुंचकर रत्नमय सिंहासन पर बैठे हुए द्वारपालों को जब देखा, तब इन ब्रह्मा आदि देवताओं का मन आश्चर्य से भर गया। द्वारपाल भी रत्नों के सिंहासन पर बैठे हैं, वे सभी परम सुंदर थे, सभी पीतांबर धारण किए हुए थे, रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। कौन? द्वारपाल, वैकुंठ के द्वारपाल भी जो है, सबके गले में दिव्य वनमाला लहरा रही थी, सुंदर शरीर श्याम रंग के थे, संघ चक्र गदा और पद्म से सुशोभित चार भुजाएं थी, द्वारपालों की भी चार भुजाएं, और प्रसन्न मुख मुस्कान से भरे थे। उन मनोहर द्वारपालों के नेत्र कमल के समान विशाल थे। फिर वैकुंठ का बहुत वर्णन है, चूंकि हमें आगे बढ़ना है, समय कम है, तो फिर ब्रह्मा जी जो है मतलब भगवान के सामने आए। परम श्रद्धा के साथ ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर बड़ी विनय के साथ भगवान श्री हरि के सामने सारी परिस्थिति सुनाई। ब्रह्मा की बात सुनकर उनके मुख पर हंसी छा गई और अद्भुत रहस्य कहना आरंभ किया। किसने? भगवान विष्णु ने। भगवान श्री हरि बोले, ब्रह्मन ये महान तेजस्वी शंखचूड़ पूर्व जन्म में एक गोप था, मेरे प्रति इसकी अटूट श्रद्धा थी, इसके संपूर्ण वृत्तांत से मैं पूर्ण परिचित हूँ। ये वृत्तांत एक पुराना इतिहास है, गोलोक से संबंध रखने वाले इस प्राचीन इतिहास को सुनिए। शंखचूड़ उस समय सुदामा नाम से प्रसिद्ध गोप था, मेरे पार्षदों में उसकी प्रधानता थी। श्री राधा के साप ने उसे दानव योनि में उत्पन्न होने के लिए विवश कर दिया। राधा बहुत करुणामयी है, सखियों का तिरस्कार करने के कारण राधा ने साप तो दे दिया, परंतु जब सुदामा मुझे प्रणाम करके रोता हुआ सभा भवन से बाहर जाने लगा, तब दयामयी राधा कृपावश तुरंत संतुष्ट हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए, उन्होंने सुदामा को रोक लिया, कहा, वत्स रुके रहो, मत जाओ, कहाँ जाओगे? तब मैंने राधा को समझाया, मैंने मतलब भगवान विष्णु कह रहे हैं लेकिन कृष्ण के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में मैंने समझाया, मतलब विष्णु और कृष्ण कोई अंतर नहीं। तब मैंने राधा को समझाया, कहा सभी धैर्य रखें, ये सुनामा आधे क्षण में ही सांप का पालन करके पुनः लौट आएगा। आधा क्षण मतलब गोरखधाम में आधा क्षण बीतेगा, आधा क्षण मतलब 2 मिनट, और पृथ्वी में 1 मनवंतर, 1 मनवंतर मतलब 30 करोड़ साल। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम चिंता मत करो राधा रानी, तुम्हारे साप को भी मैं बदलना नहीं चाहता हूं, लेकिन 2 मिनट का ही केवल समय लगेगा गोरखधाम में, दो मिनट का ही समय बीतेगा, वापस आ जाएगा, जबकि यहां पृथ्वी में 1 मनवंतर का समय है ना, 30 करोड़ साल का समय। सुदामन तुम यहां आपस आ जाना। यों कहकर मैंने किसी प्रकार राधा को शांत किया। गोलोक के आधे क्षण में ही भूमंडल पर 1 मनवंतर का समय बीतता है। गोलोकधाम में 2 मिनट का समय होता है, तो यहां 30 करोड़ साल बीतते हैं। ब्रह्मन इस प्रकार सब कुछ पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार हो रहा है, अतः अपार बलशाली ये संघचूट समय पर पुनः अपने गोलोकधाम में चला जाएगा। आप लोग मेरा ये त्रिशूल लेकर शीघ्र भारतवर्ष में जाइए, शंकर मेरे त्रिशूल से उस दानव का संहार करें। दानव संघचूर्ण मेरे ही कवच को कंठ में धारण किए रहता है, इस प्रकार से वो विश्व विजयी है, उसके कंठ में कवच रहते हुए कोई उसे मार नहीं सकता। शिवजी मेरे त्रिशूल से मारेंगे, लेकिन वो तभी त्रिशूल काम करेगा जब उसके कंठ में मेरा कवच ना हो। अतः मैं ही ब्राह्मण का वेश धारण करके कवच के लिए उससे याचना करूंगा, उससे कवच मांग लूंगा ब्राह्मण के वेश में, तो ब्राह्मण को मना नहीं करेगा, कवच मांग लूंगा। और जिस समय उसकी स्त्री का सत्य तो नष्ट होगा, उस समय उसकी मृत्यु हो गई, तो कई कंडीशन है उसकी मृत्यु की, कवच भी मैं ले लूंगा उसका, और फिर स्त्री का सत्यत्व भी नष्ट करूंगा, क्योंकि आपने उसको वर दे रखा है कि जब तक तुम्हारी स्त्री का सत्यत्व सुरक्षित है तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। तो देखो कितनी कंडीशन है, कवच जब तक रहेगा उसके गले में भगवान कृष्ण का, तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, तो भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके उससे कवच मांगे है? और स्त्री का सत्यत्व भी नष्ट करेंगे भगवान है? तब जो है भगवान विष्णु के त्रिशूल से शिव जी जब मारेंगे तब उसकी मृत्यु होगी। इसलिए उसकी पत्नी के उदर में मैं वीर स्थापित करूंगा, मैंने ये निश्चित कर लिया है। उसी समय संघचूर्ण की मृत्यु हो जाएगी, तब वो उस दानव की वो पत्नी अपने शरीर को त्याग कर पुनः मेरी प्रिय पत्नी बन जाएगी। इस प्रकार श्री हरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर के शंकर और ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दिए। इस प्रकार से फिर काफी लंबी कथा चलती है, शिव जी के साथ में संघचूड़ की बातचीत होती है और युद्ध होता है। पहले तो शिव जी के पहले भद्रकाली आती हैं संघचूड़ से युद्ध करने के लिए, और भद्रकाली भी परास्त हो जाती हैं संघचूड़ से। तो भगवान नारायण कहते हैं, नारद शिव जी के द्वारा भेजी गई भद्रकाली द्वारा जब युद्ध हुआ संघचूड़ से, और संघचूड़ भद्रकाली पराजित हो गई, तो शिव जी अब स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। उन्हें देख करके संघचूड़ विमान से उतर गया, उसने परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। शिव जी को भक्ति विनम्र होकर प्रणाम करने के पश्चात वो तुरंत रथ पर सवार हो गया और शिव जी के साथ युद्ध करने लगा। ये शिष्टाचार है। उस समय शिव और संघचूड़ में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा, कोई किसी से ना जीतता था ना हारता था। कभी समय अनुसार संघचूड़ शस्त्र रखकर रथ पर विश्राम कर लेता था, युद्ध के बीच में विश्राम कर लेता था। कभी शंकर जी भी शस्त्र रखकर अपने बैल के ऊपर आराम कर लेते थे, विश्राम कर लेते थे। शंकर जी के बाणों से असंख्य दानवों का संहार हुआ। इधर अब ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री हरि आए और संघ जोर से कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पधारे हुए श्री हरि ने संघ जोर से कहा, राजन तुम उस ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। इस समय संपूर्ण शक्तियां प्रदान करने की तुम में योग्यता है, अतः तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं एक प्यासा और बूढ़ा ब्राह्मण हूं, पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूंगा कि मुझे क्या चाहिए। संघचूड़ ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ बहुत ठीक, आप जो चाहें सो ले सकते हैं। तब वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूं। उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञा संघचूड़ ने तुरंत वो दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने ले लिया। फिर वे श्री हरि संघचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके कृष्ण कवच ले लिया, अब संघचूड़ का ही रूप धारण करके तुलसी के पास आए। वहां जाकर कपट पूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया। ठीक इसी समय शंकर ने संघचूड़ पर श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल हाथ में उठाया। वो त्रिशूल इतना प्रकाशमान था मानो सूर्य जैसा। वो शत्रु संहारक शूल त्रिशूल की तेज में चक्र के साथ ही तुलना की जा सकती है। भगवान विष्णु का जो चक्र है जैसा तेज, वैसा ही तेज शूल का था। उस भयंकर त्रिशूल को शिव अथवा केशव ये दो ही उठा सकते थे, दो ही लोग उठा सकते हैं, शिव जी या शंकर जी, अन्य किसी के बस का वो नहीं था। तब उस राजा ने सारा रहस्य जान करके धनुष धरती पर फेंक दिया। संघचूड़ पर जब मारा उस शूल, तो संघचूड़ जानता था कि रहस्य क्या है, अब क्या होने वाला है। उसने अपना धनुष फेंक दिया और योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। वो कितने चालाक होते हैं भक्त, कितने चतुर होते हैं। संघचूड़ को पता हो गया कि अब मुझे शरीर छोड़ना है, तो पहले से तैयारी की, धनुष फेंक दिया और योगासन लगा करके भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा, तब संघचूड़ के ऊपर गिरा। उसके गिरते ही उसका रथ और संघचूड़ सब जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने दिव्य गोप का वेश धारण कर लिया। उसकी किशोर अवस्था थी, वो दो दिव्य भुजाओं से सुशोभित था। उसके हाथ में बंसी शोभा पा रही थी उसके, और रत्नमय आभूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे थे। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर कर आया। उसमें चारों ओर असंख्य गोपियां बैठी थी। संघचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक धाम के लिए चला गया। हरि बोल, हरि बोल, कैसी दिव्य घटना है। उस समय वृंदावन में रास मंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधिका विराजमान थी। जब वो गोलोक धाम में गया तो रास मंडल में कृष्ण राधा के साथ थे। विमान पहुंचा, वहां पहुंचते ही संघचूड़ ने भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। कैसे कि दो मिनट में आ गया मैं। अपने चिर सेवक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। तब वो त्रिशूल आदरपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। संघचूड़ की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ माना जाता है। उस पवित्र जल को तीर्थमय माना जाता है। उसके प्रति केवल शंकर की आदर बुद्धि नहीं है, जहां कहीं भी संघ ध्वनि होती है वहीं लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं। संघ के जल से जो स्नान करे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त होता है। संघ साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहां पर संघ रहता है वहां पर भगवान श्री हरि लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं, अमंगल दूर से भाग जाता है। उधर शिव जी संघ चूड़ को मारकर अपने लोक को चले गए। उनके मन में अपार हर्ष हुआ, वे बैल पर आरूढ़ होकर अपने गणों सहित चले गए। देवताओं को अपना राज्य मिल गया। शंकर जी के ऊपर फूलों की वर्षा शुरू हो गई और देवताओं मुनियों ने शंकर जी की प्रशंसा की। अब नारद जी पूछ रहे हैं, सुनिए ध्यान से, नारद जी पूछ रहे हैं किससे? नारायण से। नारद जी ने कहा, प्रभु भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया, वो प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। बहुत दिव्य कथा है। तो नारायण ऋषि कहते हैं, नारद, भगवान श्री हरि ने वैष्णवी माया फैलाकर संघचूड़ से कवच ले लिया, फिर संघचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के घर पहुंचे। उन्होंने तुलसी के महल के दरवाजे पर दुंदुभी बजवाई, तुलसी के महल के दरवाजे पर दुंदुभी बजवाई और जय जयकार के घोष से उस सुंदरी को अपने आगमन की सूचना दी, तुलसी को, है ना। क्योंकि वीर पत्नी जो होती है ना, वो अपने पति को अपने घर में नहीं आने देती अगर पराजित होकर आए, हार करके आए, है ना। तो ये दिखाने के लिए कि मैं विजयी होकर के आया हूँ, मेरे लिए दरवाज़ा खोलो। तो वीर पत्नियाँ क्या होती हैं, दरवाजे नहीं खोलेंगी, तुम हार के आए हो, मैं घर में नहीं आने दूंगी। तो भगवान जो है पहले से जानते थे, तो दरवाज़ा खुलवाने के लिए क्या किया, दुंदुभी बजवाई और जय जयकार की ध्वनि करवाई। हैं क्या शंखचूड़ विजयी हो गए हैं, हैं शंखचूड़ महाराज शंखचूड़ विजयी होकर के आए हैं, हैं इस तरह से विजय ध्वनि करवाई और अपने आगमन की सूचना करवाई। तुलसी ने पति को युद्ध से आए देखकर उत्सव मनाया कि मेरे पति युद्ध में जीत करके आए हैं, उत्सव मनाया और हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई। तो भगवान ने जो है कुछ बातें ऐसी बता दी, वर्णन कर दिया युद्ध का कि कैसे मैंने विजय प्राप्त की। तब संघचूड़ के वेश में भगवान श्री हरि सो गए। उस समय तुलसी के साथ उन्होंने हास विलास किया, लेकिन तुलसी को अब विशेष पता चला कि ये मेरे पति नहीं है, कि भगवान का स्पर्श तो अलग ही दिव्य है, भगवान के शरीर का स्पर्श तो अलग ही है, है ना। तो तुलसी ने जो है वास्तविकता का अनुमान लगा लिया और पूछा। तुलसी ने कहा कि हे मायापति, बताओ तो तुम कौन हो, तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें सांप दे रही हूं। तुलसी के वचन सुनकर सांप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। उनका दिव्य शरीर नूतन मेघ के समान श्याम था, आंखें शरतकालीन कमल की तुलना कर रही थी, अलौकिक रूप सौंदर्य में करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य था, रत्नमय भूषण उन्हें आभूषित किए थे, प्रसन्न मुख मुस्कान से भरा था, दिव्य शरीर पर पीताम्बर सुशोभित था। उन्हें देखकर पति की मृत्यु का अनुमान उसने लगा लिया। भगवान को देख करके अपने पति की मृत्यु का अनुमान लगा लिया। तुलसी मूर्छित हो गई ये सोचकर। फिर चेतना प्राप्त होकर उसने कहा, तुलसी बोली, नाथ आपका हृदय पत्थर के समान है। क्या कह रहे हैं, आपका हृदय पत्थर के समान है, आप में तनिक भी दया नहीं है। आज आपने छल पूर्वक धर्म नष्ट करके मेरे स्वामी को मार डाला, आप अवश्य ही पत्थर हृदय वाले हैं, पत्थर हृदय वाले हैं, तभी तो इतने निर्दयी हैं। अतः देव मेरे सांप से आप पत्थर रूप होकर पृथ्वी पर रहिए, अहो बिना अपराध के अपने भक्त को आपने क्यों मरवाया। इस प्रकार शोक से संतप्त हुई तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। तब करुणा के समुद्र कमलापति भगवान श्री हरि तुलसी देवी को समझाने लगे कि भगवान के कार्य में कहीं दोष होता ही नहीं है, कभी कभी दिखाई देता है कुछ दोष, लेकिन भगवान के कार्य में किसी प्रकार का ना धर्म होता है ना दोष होता है, कुछ भी तो नहीं होता है। तो भगवान समझाते हैं, भगवान श्री हरि बोली, भगवान श्री हरि बोले, क्षमा करिए, बोले बोले देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो, उस समय तुम्हारे लिए संगचूड़ तपस्या कर रहा था, अपनी तपस्या के फल से तुम्हें प्राप्त करके वो गोलोक में चला गया, गोलोक से आया था और गोलोक में चला गया, राधा रानी का साप एक निमित्त कारण था, है ना। अब गोलोक में चला गया, अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल दे रहा हूं, तुमने जिसके लिए तपस्या की थी अब मैं तुम्हें फल दे रहा हूं, है ना। तो कुछ भी मेरे कार्य में किसी प्रकार का जो कठोरता नहीं है, मेरे किसी भी कार्य में कोई कठोरता नहीं है, है? वो तो ऐसा लगता है कि वो मर गया ये मर गया, है ना। सुदामा ने जब शरीर छोड़ा था तो कोई कष्ट थोड़ी हुआ था, उसने शरीर छोड़ा तो गोलोक धाम से विमान आया, है ना। तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ रहो, लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना है। अब लक्ष्मी जी के साथ में तुम्हारी कोई कलह नहीं होगी, लक्ष्मी जी बहुत शांत स्वभाव की हैं, राधा रानी की तरह नहीं, लक्ष्मी जी बड़े शांत स्वभाव की हैं, लक्ष्मी के साथ तुम रहोगी। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में परिणत हो गंडकी नाम से प्रसिद्ध होगा, शरीर क्या बन जाएगा, नदी, गंडकी नदी, ये पवित्र नदी भारत वर्ष में मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली होगी, तुम्हारे केश पवित्र वृक्ष होंगे, शरीर तो नदी बन जाएगा और केश क्या बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होगी। तीनों लोकों में पूजा के काम में आने वाले जितने भी पत्ते और फूल हैं उस समय तुलसी प्रधान मानी जाएगी, स्वर्ग लोक, मर्त्य लोक, पाताल और वैकुंठ लोक सर्वत्र तुम मेरे निकट रहोगी, सुंदरी तुलसी के वृक्ष सब फूलों में श्रेष्ठ होंगे, तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र और पुण्यदायक होंगे, अतः वहां संपूर्ण तीर्थों और समस्त देवताओं का निवास होगा, कहां पर, तुलसी वृक्ष के नीचे, ऊपर तुलसी के पत्ते पड़े इसी उद्देश्य से वे सब लोग वहां पर रहेंगे, तुलसी पत्र से तो तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का और समस्त यज्ञों का फल प्राप्त हो गया, समझ रहे, तुलसी पत्ते के जल से जिसका अभिषेक हो गया उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल मिल गया और समस्त यज्ञों का फल मिल गया, हजारों घड़ी अमृत से नहलाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती है जितनी वे मनुष्यों के तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं, समझ रहे, हजारों अमृत के घड़े से स्नान करने से भी भगवान इतने तृप्त नहीं होंगे जितना कि मनुष्यों के द्वारा तुलसी का एक पत्ता मिल जाए। देवी 10,000 गोदान से मानव को जो फल प्राप्त होता है वही पत्र तुलसी पत्र के दान से प्राप्त होता है, 1,000 गोदान का फल, जो मृत्यु के समय मुख में तुलसी का पत्र तुलसी पत्र का जल पा जाए वो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में चला जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वो जीवन मुक्त है और उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर मेरी पूजा करता है वो 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। जो मानव तुलसी को अपने हाथ में लेकर और शरीर पर रखकर प्राण त्यागता है वो विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष, आपको धारण करते हैं तुलसी काष्ठ की माला गले में धारण करने वाला पुरुष एक एक पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण चला जाए अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। हरि बोल। पूजा के लिए तुलसी का पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र रहता है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ भी तुलसी का पत्ता धो देने पर शुद्ध माना जाता है। जल में गिर गया हो या पानी में गिर गया हो या विष्णु को अर्पित भी कर दिया हो, तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पित कर दिया हो और फिर से अगर धो दें तो फिर से शुद्ध है, फिर से प्रयोग कर सकते हैं तुलसी का पत्ता। कितनी सुविधा है ना। गवाम अयोतय दानेन यत्फलं लभते नरहाम तुलसी पत्र दानेन तत्फलं लभते सतीं। तुलसी पत्र तोयम् चा मृत्युकाले च यो लभेन मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। नित्यं यस्तुलसी तोयम् भुङ्क्ते भक्त्या च मानवः स एव जीवन्मुक्तश्च गङ्गास्नाने फलं लभेन। नित्यं यस्तुलसीं दत्त्वा पूजयेन् मां च मानवः लक्षाश्वमेधजं पुण्यं लभते नात्र संशयः। तुलसी काष्ठ निर्माण मालां गृह्णाति यो नरः पदे पदे स्वमेधस्य लभते निश्चितं फलम्। तुम गोलोक धाम में तुलसी देवी बनकर श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। कौन कह रहे हैं? भगवान विष्णु कह रहे हैं तुलसी बनकर, तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर मेरे स्वरूप श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारी देह से उत्पन्न नदी की नदी है ये क्षार समुद्र की पत्नी होगी और तुम महाशांति तुलसी रूप से वैकुंठ में मेरे निकट निवास करोगी। वहां तुम लक्ष्मी के समान सम्मानित होगी। गोलोक के राज में भी तुम्हारी उपस्थिति होगी इसमें संशय नहीं है। और मैं तुम्हारे साप को सत्य करने के लिए तुमने मेरा मुझे साप दिया है तो भगवान क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे साप को स्वीकार करता हूं। क्यों? भगवान ये भी शिक्षा देना चाहते हैं, भगवान ये भी शिक्षा देना चाहते हैं क्या कि जैसे कि मतलब पराई स्त्री के साथ अगर संबंध किया तो उसका भी दंड मिलना चाहिए। तो भगवान उस दंड को स्वीकार कर रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए। हालांकि भगवान में तो कोई दोष नहीं लगता लेकिन तो भी मैं तुम्हारे साप को स्वीकार करता हूँ शिक्षा देने के लिए संसार को है? तो मैं भारतवर्ष में पत्थर बनकर रहूंगा, गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा, वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पत्थर में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। करोड़ों कीड़े हैं गंडकी नदी में, वो मजदूर हैं भगवान के, मजदूर हैं जो शालिग्राम शिला बनाते हैं अपने दांतों से काट काट करके है? वो भी सब जो है अच्छी ट्रेनिंग उनको मिली है उन कीड़ों को, तो विशेष चिन्ह बनाते हैं पत्थर में। वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। उनके दांत ही उनके औजार हैं, जैसे मजदूर अपने औजार से काम करता है ना, तो वे कीड़े जो है वो भगवान के मजदूर हैं, अपने दांत के औजार से वे चक्र का चिन्ह बनाएंगे पत्थर में, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा और 4 चक्र होंगे और वनमाला होगी, तो वो श्याम वर्ण का पत्थर लक्ष्मी नारायण शिला कहलाएगी, जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे और वनमाला का चिन्ह नहीं होगा, तो ऐसे श्याम रंग के पत्थर को लक्ष्मी जनार्दन शिला कहलाएगी। 2 द्वार और 4 चक्र और गाय का खुर का चिन्ह हो और वनमाला का चिन्ह ना हो तो राघवेंद्र शिला कहलाएगी, जिसमें बहुत छोटे 2 चक्र के चिन्ह हो और वो काले रंग का पत्थर होगा वो दधि वामन शिला कहलाएगी। ऐसे बहुत से जो है उन्होंने चिन्ह बताए भगवान ने, कैसे अनेक प्रकार की जो है शिलाएं। इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न होकर भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ चले गए। हे नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये चार देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। चार पत्नियां हैं वैकुंठ में, कौन कौन है? तीन तो पहले थी, एक और हो गई तुलसी। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा तो पहले से हैं, चौथी और हो गई तुलसी। ये चार देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। उसी समय तुलसी के देह से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए सालग्राम शिला बन गए। वहां रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार की चिन्ह बनाते हैं और वे पत्थर जल में गिर कर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। भगवान नारायण ऋषि कहते हैं, भगवान श्री हरि तुलसी को पाकर उसके और लक्ष्मी के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को भी गौरव सौभाग्य में लक्ष्मी के समान बना दिया। लक्ष्मी और गंगा ने तो तुलसी के सौभाग्य को सह लिया किंतु सरस्वती क्रोध के कारण सहन ना कर सकी। सरस्वती के द्वारा अपना अपमान होने पर तुलसी अंतर्धान हो गई। उन्होंने श्री हरि की आंखों से अपने को ओझल कर लिया। कितनी शक्ति तुलसी में, भगवान श्री हरि की आंखों से भी ओझल हो गई। भगवान ने उसे ना देकर सरस्वती को समझाया और सरस्वती से आज्ञा लेकर तुलसी वन में गए। सरस्वती को समझाया कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए तुम्हें, और फिर सरस्वती की आज्ञा लेकर के कि अब मनाओ तुलसी को, मैं भी मनाऊंगा, तुम भी मनाओ। तुलसी वन में गए। घृत का दीप, धूप, सिंदूर, चंदन आदि उपचारों से और स्तोत्र द्वारा भगवान ने पूजा की तुलसी की। अतः वृक्ष से तुरंत बाहर निकल आई, परम प्रसन्न होकर श्री हरि की चरण कमलों की शरण में आ गई। तब भगवान ने उसे वर दिया, देवी तुम सर्व पूज्य हो जाओ, मैं स्वयं तुम्हें अपने मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करूंगा। इतना ही नहीं, संपूर्ण देवता अपने मस्तक पर धारण करेंगे तुम्हें। यूं कहकर उसे साथ लेकर भगवान श्री हरि अपने स्थान पर लौट आए। तो भगवान ने फिर जो है तुलसी की स्तुति भी की है। तो तुलसी की स्तुति जब भगवान ने की तो भगवान श्री हरि स्तुति करके बैठ गए। तब उनके सामने साक्षात तुलसी प्रकट हुई, चरणों में तुरंत मस्तक झुकाया। अपमान के कारण तुलसी की आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसे पहले बड़ा सम्मान मिल चुका था, फिर बाद में सरस्वती ने अपमान किया था। ऐसी प्रिया तुलसी को देखकर प्रीतम भगवान श्री हरि ने तुरंत उसे अपने हृदय में स्थान दिया। साथ ही सरस्वती से आज्ञा लेकर उसे अपने महल में ले गए। उन्होंने शीघ्र ही सरस्वती के साथ तुलसी का प्रेम स्थापित करवाया। भगवान का काम बिल्कुल पूरा होता है कि आगे फिर कभी भी मतलब ऐसी घटना ना हो, तो सरस्वती द्वारा अपमान ना करें, तो अपने सामने ही वह तुलसी और सरस्वती के बीच में प्रेम स्थापित कराया। साथ ही भगवान ने तुलसी को वर दिया, देवी तुम सर्व पूज्या हो जाओ, सब लोग तुम्हारा आदर और सम्मान करें। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर वो देवी परम संतुष्ट हो गई। सरस्वती ने उसे हृदय से लगाया, अपने पास बैठाया। हे नारद, लक्ष्मी और गंगा इन दोनों देवियों ने मंद मुस्कान के साथ साध्वी तुलसी का हाथ पकड़कर उसे अपने भवन में प्रवेश कराया। तो इस तरह से मतलब काफ़ी लंबी कथा थी जो कि मैंने संक्षेप में सुनाई। तो आज से चूँकि तुलसी और शालिग्राम का जो है जलदान है, तो हमने तुलसी की कथा को सुनाई। शालिग्राम का भी महात्म्य बहुत है शास्त्रों में, जैसे तुलसी का महात्म्य भरा पड़ा है। हर शास्त्र में तुलसी का महात्म्य मिलता है बहुत विस्तृत। उसी प्रकार से शालिग्राम शिला का भी महात्म्य बहुत विस्तृत है, अनेक अनेक ग्रंथों में मिलता है। तो इतना तो समय नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है, आप राम प्रश्न। इस समय आपका प्रश्न है कि इस समय क्या वो ऐसी तपस्या हो सकती है? नहीं, ये समय नहीं हो सकता, कलयुग में ऐसी तपस्या नहीं हो सकती। अच्छा स्त्री, हाँ स्त्री जो है आज्ञा लेकर के, अपने पिता की आज्ञा लेकर के तपस्या कर सकती है, अपने पति की आज्ञा लेकर तपस्या कर सकती है, लेकिन अभी तो ये तपस्या संभव ही नहीं है कलयुग में, है ना। इसलिए अब सबको जो है अब एक ही तपस्या बताई जाती है, हरि नाम, ठीक है ना। यही मतलब एक नियम है एकमात्र जो कर सकते हैं, और बाकी तो जो है भक्ति के बहुत से कार्य हैं, यथाशक्ति आप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत सुनना है, भगवद गीता सुनना है, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना है, इस प्रकार से बहुत से कार्य हैं। धन्यवाद। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री श्री राधिका रमण भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की, श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की। हरि बोल।